أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيسے ہیں آپ لوگ؟ الحمد للہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ایک موقع دیا اور ہم نے اس پہ لبیک کہا. ہر روز شعور کے ساتھ اس بات پہ الحمد للہ کہا کریں. بولیے الحمد للہ علی نعمت الاسلام، الحمد للہ علی نعمت الہدایہ. اور اللہ نے آپ کو مجھے شاید ساری دنیا سے زیادہ ہی موقع دیے ہیں شکر کرنے کے. دن میں کوئی ایک وقت ایسا ضرور رکھا کرے، فیو منٹس بھی ہو سکتے اور اس سے زیادہ بھی، اپنی اپنی نعمتوں کے حساب سے بڑھا لیجئے وقت کو، جس میں آپ واقعی اپنی ایک ایک نعمت کو سامنے رکھے اور ترتیب سے شروع کر لیں، اپنے وجود سے لے کے گھر، بچے، چیزیں، مادی اور دوسری چیزوں کو لے کر، اور پھر آپ اس میں محسوس کیجئے. ایسے ہی نہیں کہ رسم آئی بس جی اب ٹھیک ہے، ہو گیا، کر رہے ہیں نا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، نہیں. یہ خود کو جھنجھوڑیں، اپنے بارے میں خود کو یقین دلائیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، میرے سامنے کیا چیز آ رہی ہے، اور پھر اس کے اوپر بات کریں. آپ دیکھیں گے کہ غیر مخصوص طریقے سے آپ کو ڈپریشن کم ہوگا. آپ سوچیں گے میں تو پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی اپنے بارے میں، لیکن مجھے تو بہت ہی کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ پھر ایک ایک کر کے اللہ کی رحمت سے کام صحیح ہو جائے گا. کنٹینیو کریں گے. آج ہم 8th پارے کے رکوع نمبر، بولیے، 13 سے ریڈی ہیں سب. رکوع نمبر 13، پارہ نمبر 8. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم کنٹینیو کریں گے اپنے پارے کو رکوع نمبر 13 سے. آراف کا تذکرہ ہے، سورت کا نام بھی آراف ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف طرح کے مواقع دیے زندگی میں، جیسے کہ مجھے اور آپ کو ملتے ہیں. کچھ نے یہ سوچ کے کسی ایک کو، یعنی اب میں آپ کو جو پن پوائنٹ دینے لگی ہوں نا اس وقت، وہ بہت اہم ہے. اس کو آپ چلتے پھرتے نہیں سن سکتے، سنیں گے تو دل پہ نہیں آئے گا. زندگی میں ہم میں سے ہر ایک کو ہزاروں لاکھوں مواقع ملتے ہیں نیکیوں کے، اور ہم اس میں سے اکثر سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کبھی کوئی ایسا ایک موقع آ جاتا ہے جس کے بارے میں ہمارے گمان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ نیکی نہ بھی کروں تو کیا ہوگا، کر لی نا، اٹس اوکے، کوئی اور بھی تو کر لے، کوئی دوسروں کا بھی تو خیال کرنا چاہیے. یعنی شیئرنگ از کیئرنگ، کیئرنگ از شیئرنگ. اس وقت ہمیں اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے. لیکن قیامت کا دن ہوگا، آپ کا اور میرا رزلٹ اناؤنس ہوگا. اور ہم صرف ایک نیکی، اونلی ون ڈیڈ دیٹ کین وی ایکسیپٹ، لیکن ہم نے نہیں کیا. وہ نیکی جو ہم کر سکتے تھے، ہمیں آفر بھی ہوئی، حالات بھی تھے کرنے کرانے کے لیے، سارے معاملے تھے، لیکن ہم نے کبھی تو یہ سوچ کے کہ اٹس اوکے، کبھی اس کے لیے جتنی کوشش کرنی تھی اتنی نہیں کی، یعنی گیو اپ کر دیا، یہ دوسری وجہ لکھ لیں. کبھی کبھی اپنی دوسری نیکیوں کے زوم پہ ہم نے اس نیکی کو لبیک نہیں کہا. اور جس دن ہمارا رزلٹ نکلے گا، پتہ کیا چلے گا کہ یہ ایک نیکی ہمیں جنت سے دور رکھ گئی اور آراف پہ آ گئے. مقام آراف پہ جو لوگ ہوں گے وہ کچھ اسی قسم کے لوگ ہوں گے کہ جن کی نمبر ایک نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی. لکھے یہ آپ کے میرے سوچ کا نقطہ. کسی ایک نیکی کو بھی ہلکا نہ جانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کسی نیکی کو ہلکا نہ جانو، چاہے اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا. یعنی ایک مسلمان کو دیکھ کر جو خوشی ہونی چاہیے اس کو بھی ہلکا نہ سمجھو اور وہ نیکی آپ نے چھوڑ دی. چھوڑے نا، اس اوکے، پھر کیا. جیسے دیکھیے کبھی کبھی آپ کے اوپر ایسے حالات آتے ہوں گے، عام دنوں میں نہیں پتہ چلے گا آپ کو، کیونکہ اللہ کا شکر ہے آج کے دور میں تو پیسے جیب میں رکھنے کا رواج بھی کم ہو گیا نا. باہر والوں کی جیب میں تو ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ کارڈز چلتے ہیں، نمبر چلتے ہیں، ویپس کر دیجئے اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں. لیکن جہاں صرف کیش چلتا ہو، کبھی آپ کی جیب میں زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، क्यों भला? ज़रूरत के तहत, कभी ज़रूरत पड़ेगी कभी नहीं पड़ेगी। जब आपकी जेब में या आपके पर्स में बहुत से पैसे हों और आप तारिक रोड जाएं, शॉपिंग कैसी होती है? ये भी ले लो, ये भी दे दो, इस ओके ओके, क्योंकि पैसे बहुत हैं। अंदाज़ा तो होता ही है ना कि जेब में क्या है, पर्स में क्या है। लेकिन अगर बिल फर्ज आपके पास बिल्कुल लिमिटेड पैसे हों, यानी किसी के मंथ की पे ही कम आती है, या जॉब वाले हैं उनके मियाँ, पूरे महीने की ज़रूरियात इज्जत से पूरी हो गई, या आखिरी दिन चल रहे हैं महीने के, क्या आपकी शॉपिंग शुरू महीने की शॉपिंग वाली होगी? इवन जो लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ होके अपनी बेसिक्स यानी ग्रोसरी और राशन पानी भी लेते हैं, वो भी शुरू में लेते हैं। हमारे एक मतलब किसी और जगह की बात है, यानी ऐसे हैं तो उन्होंने बताया कि ग्रोसरी स्टोर में सबसे ज़्यादा सेल पहले वीक या 8-10 तारीख तक होती है। उसमें लोग आते हैं तो 5 किलो चावल हैं, तो 5 किलो चीनी, तो ये तो वो, तो दिस एंड दैट। लेकिन फिर जब बीच के 10 दिन होते हैं ना, उसमें और कम हो जाती है, और आखिरी जो 10 दिन है उसमें बहुत कम होती है। कोई आता भी है ना तो 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, ऐसे। क्योंकि जो महदूद इनकम के लोग हैं उनके पास बजट होता है। बिल्कुल लिखिए कि जिस तरह हमारे पास रुपए कम ज़्यादा हो सकते हैं, कभी ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप करोड़पति भी हो सकती हैं, आपके मियारा पति भी हैं, लेकिन आप पर्स ही भूल जाएं घर में। कई दफ़ा होता होगा, हमारे जैसे को पता ही नहीं होता पर्स भी है पास के नहीं, और है भी तो किधर है, किसके हाथ में पड़ा है, हो सकता है ना। अब आप उस वक़्त जब आपको सिर्फ $1 की ज़रूरत पड़ी, ओनली $1, और आपको बताओ कि अमेरिका में आज भी $1 की अहमियत और इज़्ज़त आपके पाकिस्तान में 1 रुपए के जो इक्विवेलेंट पैसे हैं उससे ज़्यादा। अब जब आपने किसी एक नेकी को पीछे कर दिया, और वहाँ अराफ पे पता चला कि बस एक और होती ना तो वो जन्नत का रास्ता है, घुस जाओ। और आपके सब जा रहे हैं, आपकी सास भी गई, नंदे भी गई, भावजें भी गईं, भाभियाँ भी गईं, वो दोस्त हैं जिनसे सारी ज़िंदगी आपके तकाबल होते रहते थे, वो सब चली गई, और आप खड़ी हैं, बस कैसा फील होगा? तो आराफ पे कुछ लोग ऐसे होंगे, करें क्या? अपनी हर नेकी को बहुत बड़ी दौलत समझें। अपने लिए एक जुमला लिखिए, हर नेकी की पुकार पे ये सोच के लब्बाई कहूँगी कि शायद यही है वो नेकी जो मुझे जन्नत में ले जाए। और इस नेकी की महरूमी या इस नेकी का ना होना मुझे आराफ के मुकाम पर खड़ा कर देगी। हम में से कोई नहीं चाहता कि हम पीछे रहें, सच्ची जो बात है। जहाँ भी जाते हैं दिल करता है सबसे पहले खाने की लाइन में लगे हैं, शादियों पे लोग क्या होता है, पहले मैं ले लूँ। पिकनिक पे गए हैं सबके साथ है, कुछ सबको खाना सर्व करके एंड पे आपको क्या है, आप भी ले लें, आप कहेंगे ये क्या बात है ना। तो नेकियों में पहल करना। दूसरी इससे भी ख़तरनाक बात बताने लगी, पहली जज्ब हो गई, आज के बाद नेकियों को कमोडिटी बनाइए। $1 भी कोई दे तो वो भी हमें लगे छोड़े, इट्स ओके, कीप इट, चेंज है ये, रेजगारी है। कुछ लोग नेकियों के बहुत बड़े बड़े मौाक़े, एक नहीं बहुत बड़े बड़े मौाक़े को रौनक से कहते हैं कीप इट, चेंज है तुम ले लो, आई डोंट नीड इट, आई हैव मैनी। और ये अंदर तकबर हो जाता है, गरूर होता है, हमें नहीं पता चलता। बाहर हम बड़े मिस्कीन तब होते हैं, लेकिन वही बात है कि पता है जेब में बड़े पैसे हैं, बड़ी नेकी। ताजुब जी तो आज इतनी अच्छी पढ़ी थी, तरावी भी पढ़ के आए हैं, खाना भी काफ़ी लोगों को बना के भेजा था, इतनी नेकियों में अब क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये नेकी ना करूं। बहरहाल दूसरा एंगल इससे भी डेंजरस है, वो लोग अराफ पे खड़े किए जाएंगे जिनकी बहुत सारी नेकियां इस चीज़ की गम्माज हैं कि वो जन्नत में जाए। हैट को हैट जाने दो, ये भी पेपर क्लियर, ये भी क्लियर, बोर्डिंग पास भी मिल गया, लगेज भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, लेकिन अंदर स्कैनर, आपको तो हैंड लगेज जब लेके जाते हैं ना तो स्कैनर्स में से गुजारते हैं ना, वो वहाँ रुका हुआ है। कोई एक ऐसी खराबी, कोई ऐसा गुनाह, कोई प्रोहिबिटेड आइटम, कोई हराम, कोई ममनुआ, कोई शजरे ममनुआ में से ऐसी चीज़ अमालनामे में निकल गई जिसकी वजह से कहते हैं रोक दो इनको, फ्लाइट में नहीं चढ़ने देंगे। हमारा तो अल्लाह के हुक्म से एक साल में कई दफ़ा जहाज़ों में चढ़ते हैं और कई मुल्कों के बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो ये चीज़ें आम हैं। सिर्फ एक पेपर ना आने की वजह से कई दफ़ा आपको नहीं बजाने देते, कभी कोई वजह, कभी सारी फैमिली को जाने दे रहे हैं, कभी नहीं। कोरोना के दिनों में ऐसा हुआ, हम लोग ओस्लो से लंदन की फ़्लाइट में जाने वाले थे, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम लोग सामान देख कर अपना बोर्डिंग पास लेके जब वापस आ रहे हैं ना अंदर जाने के लिए, तो उधर एक अंकल और आंटी देसी टाइप के ही थे, तो वो खड़े थे, तो उन्होंने हमें रोक लिया। हम उनको पहले भी पीछे देख रहे थे, तो किसी काउंटर पे उनकी चीज़ें चल रही थी। तो बाद में किस्सा मुझसे कहने लगे कि आप ये मेरी मिसिस को अपने साथ बिठा लेंगे, ले जाएंगे अगर ये चली जाए, मैं नहीं जा रहा। हमने पूछा खैरियत? तो उन्होंने कहा कि वो जो कोरोना का कोई सर्टिफिकेट चाहिए था लंदन वालों को, यूके वालों को, वो इनका तो है, मेरा नहीं है। तो वो कह रहे हैं ये चली जाएं, लेकिन आप नहीं जा सकते। तो मैं अकेले भेजते हुए सोच रहा हूँ तो आप इनको ले जाएंगे। सिर्फ एक पेपर, ओनली वन पेपर। अभी लास्ट मंथ हमारे अपने साथियों में कोई आ रहे थे पाकिस्तान, कितनी तैयारी होती है, आप सब जानते हैं, सफ़र से पहले के औकात हैसल कर करा के जब वो एयरपोर्ट पे पहुंची हैं काउंटर पे, तो पता चला कि वो एक कार्ड होता है जो दिखाना होता है, तो वो घर में किसी दूसरे बैग में भूल गई, नहीं आ सकी। ये रफ है, डोंट टेक इट नॉन सीरियस। आपने उम्रे पे जाना है, अल्लाह आपको लेकर जाए। 10 दफ़ा आपके मियाँ पूछेंगे, या आप रखती हैं या वो रखते हैं, आप उनको पूछेंगी पासपोर्ट रख लिए, टिकट ले लिए, ज़रा चेक कर लें डॉक्यूमेंट्स का बैग पास है, टाइम चेक कर लिया अपने फ्लाइट का, वो लगेज वाला देख लिया था, कितना हम केयरफुल हैं। तो इस सोच के साथ आप सुनिए रुकू नंबर 13 को, आयत 53 से 48, रहमतों से फ़ायदा उठाना। वना दसाबुल आराफ ही रिजाला, और अहले आराफ है बहुत से आदमियों को, जिनको के इनके क्याफे से पहचानेंगे, क्याफा कहते हैं चेहरे से और फेस रीडिंग से, पुकारेंगे कहेंगे कि तुम्हारी जमात और तुम्हारा अपने आप को बड़ा समझना तुम्हारे कुछ काम ना आया। इधर रुकिए, मैं अपने ऊपर लेके बात करती हूँ, आप अपने ऊपर लीजिए। कभी कभी लोग हमें बड़ा समझने लग जाते हैं, कभी लोग हमारी तारीफें कर करके हमें सर पे चढ़ाते हैं, आप तो बड़े नेक हैं जी। किसी की नेकी देकर लोग उसकी तारीफें मुंह खोल के जब करते हैं ना, उसको कौन छुरी से काट रहे होते हैं पता है आपको? आपके घर तो इतना कुछ होता है, आप तो जन्नती हैं, आपके तो 4 बेटे हाफिज हैं जी, आपके तो मियाँ साहब इतने नेक हैं, और आपका तो क्या कहना, आप तो सारा दिन पढ़ती पढ़ाती हैं। कहेंगे किधर गया वो तुम्हारा अपने आप को बड़ा समझना? क्या ये वही हैं जिनकी निस्बत तुम कस्में खा खा कर कहा करते थे कि अल्लाह ताला इन पर रहमत न करेगा, इनको यूं हुक्म होगा कि जाओ जन्नत में, तुम पर ना कुछ खौफ है और ना तुम मगमूम होंगे, यानी गम नहीं होगा, और दोजख वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे कि हमारे ऊपर थोड़ा सा पानी तो डाल दो। ओनली वाटर, रूह अफ़ज़ा नहीं, शरबत नहीं, लस्सी नहीं, सिर्फ पानी डाल दो, और ठंडा भी नहीं, बस पानी, या फिर जो अल्लाह ने तुमको दे रखा है उसमें से दे दो। जन्नत वाले कहेंगे अल्लाह ने दोनों चीज़ों को कुफार के लिए बंदिश बना दिया, नो सॉरी इट्स नॉट अलाउड। आप जहाज़ में बैठे इकोनॉमी क्लास में, आपके और फर्स्ट क्लास के बीच में एक छोटा सा कर्टन होता है, आप ज़रा एयर होस्टेस को कहिए वो जो फ्रेश जूस आपने दिया है ना अभी फर्स्ट क्लास को, ज़रा मुझे भी उसका एक ग्लास दे दें, आपको उस वक्त अपनी कीमत समझ आ जाएगी। वो इसीलिए पहले पर्दा डाल लेते हैं कि आपका दिल ना दुखे। अभी जहाज़ नीचे ही होता है और गर्मी लग रही होती है और एसी भी नहीं चल रहे होते, गर्मी गर्मी, और आप पानी के ना एयर होस्टेस को कहती सब्र करें ज़रा जहाज़ चलेगा फिर देंगे, और आगे वालों को उस वक्त फ्रेश जूस दे रहे होते हैं, और आप कह रहे हैं कि सर गिव मी वन ग्लास प्लीज़, सॉरी वी आर नॉट अलाउड। आप जा रहे हैं जहाज़ पीछे पूरा भरा हुआ है, फर्स्ट क्लास की कुछ जगहें खाली हैं, आप कहते कहने इसे ठहर, कहते नो नो इट्स फर्स्ट क्लास, यू नीड टू पे एक्स्ट्रा, ये स्पेशल सीट्स हैं। दुनिया में तो हमारा दिमाग कितना चलता है, आपको विंडो रो लेनी है, आपको एग्जिट रो लेनी है, आपको बल्क हेड लेना है, आप फ्रंट में बैठ रहे हैं, आप बीच में बैठ रहे हैं, आप पीछे बैठ रहे हैं, जन्नत के लिए हम कैसे आराम से बैठे हैं, सोचते भी कम है। तो जहन्नमी जन्नतियों को देख कर कहते हैं ज़रा पोर थोड़ा सा पानी तो डाल दो हम पे। अच्छा पानी नहीं, कुछ भी दे दो, अब जन्नती अपने ही हैं, कोई अपने ख़ानदान के, कोई बिरादरी के, कोई दोस्त, कोई साथी, कोई साथ दीन के कामों में लगे हुए, वो कहते हैं ना 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 अल्लाह ने इन चीज़ों से रोका हुआ है, हमें इजाज़त नहीं, हमारी जॉब का मसला है। आप एयर होस्टेस से कहते हैं मैं इधर नमाज़ पढ़ लूँ, कहते हैं नहीं क्यों, कहते हमारी वर्दी का मसला है, अगर पकड़े गए तो हमें सज़ा हो जाएगी। आप 10 मिसालें और मुझसे सफ़र की ले लें, सफ़र की मेरे पास वैसे भी बड़ी मिसालें हैं, तो वो आपको इजाज़त नहीं देते, वो कहते हैं हम पकड़े जाएंगे। एक दफ़ा मैं अमेरिका से आई और हमारा स्टॉप था दुबई में, मेरे ब्रदर होते थे, हम वहाँ कुछ दिन रहे, उधर से आगे आना था, बड़े खरामा खरामा मुड़ के आ गए, मेरा जो पाकिस्तान का कार्ड तो बना ही होता है हम लोगों ने, तो वो बन चुका था अमेरिका में, लेकिन अभी मेरे पास उसकी हार्ड कॉपी नहीं पहुंची थी, मेरे पास उसका ई स्केच भी था कि कि आपका प्रूव हो गया, आपको आना। आने के दिनों में आखिरी दिन तक हमें नहीं पहुंचा था। हमने कहा किसी को कहिएगा बाद में भेज दें। पाकिस्तान से 2 घंटे दूर, पीछे से 18, 19, 20 घंटे की फ़्लाइट कर चुके हैं, और जब उनको पेपर्स दिखा वो कहते थे आप पाकिस्तान जा रहे हैं, आपका तो अमेरिकन पासपोर्ट है, आपको तो जी पाकिस्तानी दिखाना है, भाई कार्ड की तरह ये है वो है, कहा कि ये है, नहीं जाने दिया। मिन्नतें कर ली क्या? मैंने कहा आपको मेरे पे एतबार नहीं, मैं पाकिस्तानी, मैं इतनी लॉयल पाकिस्तानी, मैं इतनी पाकिस्तान से मोहब्बत करने। उन्होंने कहा मैम वी कैन अंडरस्टैंड, बट ये हमारी वर्दी का मसला है, हमारी एयरलाइन बैन कर दी जाएगी अगर हमने आपसे पाकिस्तानी आईडी के बगैर आपको जाने की इजाज़त दी, तो आप में जन्नत में घुसेंगे। कुछ लोगों ने सोचा वह धक्का मारेंगे ना तो घुस जाएंगे, जैसे हरम के दरवाज़ों में घुसते हैं, हमें पाकिस्तानियों को धक्के मारने वैसे ही बड़े आते हैं, लाइन में पीछे से निकल के आएंगे, आगे खड़े होके चले जाएंगे, वीआईपी लाउंज है जी, हम वीआईपी, हमें कौन रोके। अब सवाल देखिए, यहाँ लफ्ज़ काफिर आया है, आप सोचिए इस पर ये कौन सा कुफर है? ये वो कुफर नहीं है जो अबू जहल का था, ये वो कुफर नहीं है जो उबै बिन काब का था। अल्लज़ीना, आयत 51 में इसका जवाब है, जिन्होंने दुनिया में अपने दीन को लहू लाई बना रखा था और जिनको दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल रखा था, बस हम भी आज के रोज़ इनका नाम भूल जाएंगे जैसा कि वो इस दिन को भूल गए, जैसा कि वो हमारी आयतों से इनकार करते थे। ये अमली काफिर है, इतकाती नहीं है, सुस्त, लिथार्जिक, ढीले ढाले, लिबरल, मॉडरेट किस्म के मुसलमान, ये भी कर लो वो भी कर लो, मस्जिदों में चंदे भी दे दो, नमाजें भी पढ़ लो, उम्रे भी कर लो, और साथ फिर शराब कबाब और अपनी खुशियों को गैरों के नाम पे भी लगा लो, ऐसे काफिरों की बात है। जवाब सुनिए 52 में, और हमने इन लोगों के पास एक ऐसी किताब पहुंचा दी है जिसको हमने अपने इल्म की इल्म कामिल से बहुत वाजे करके बयान कर दिया, वो ज़रिया हिदायत और रहमत इन लोगों के लिए है जो ईमान लाए। टूटी कहाँ पे कमन जब दो बाम मंजिल रह गई, दो बाम या दो गाम होते ना, सिर्फ मंजिल 2 कदम पे थी और आपको रोक दिया गया। अल्लाह कहता है दुनिया में किताब आई थी ना, मैंने हिदायत और खुशखबरियों से भरी किताब दी थी, तुमने सीरियस ही नहीं लिया, तुमने कहा हमें सब पता है, हमें दौरे कुरान की क्या ज़रूरत, हमें ये 8वां पारा क्या पढ़ना है, हमने तो इतनी दफ़ा पढ़ा। अल्लाह कहता है तुम उसको सीरियस नहीं ले गए थे, नमाज का वक्त जा रहा था, तुम अच्छा भी पढ़ लेती हूँ ना, अच्छा किचन साफ़ करो, अच्छा ये भी तो सवाब है, ये भी तो कुकुल इबाद है, इसमें भी तो नेकी है, अच्छा बाद में पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं, वो नहीं, इसी डिली डेली में तुम निकल गए। इन लोगों को और किस बात का इंतज़ार है? अब ज़रा डांट सुनिए, सिर्फ इसके आखिरी नतीजे का इंतज़ार है, जिस रोज़ इसका आखिरी नतीजा पेश आएगा, और इस रोज़ जो लोग इसको पहले से भूले हुए थे यूँ कहेंगे कि वाकई हमारे रब के पैगंबर सच्ची सच्ची बातें लाया करते थे। सो क्या हमारा कोई सिफारिशी भी है कि हमारी सिफारिश कर दे, या क्या हम वापस भेजे जा सकते हैं, यानी वी वॉन्ट टू गो बैक? आज अगर एरोप्लेन में कोई मसला आ जाए ना टिकट में, तो क्या कहते हैं पीछे भेज दो, चलो जी हम जाएँ, वहाँ भी लोग कहेंगे हमें नहीं जाने दे रहे ना आगे, चलो हमें वापस भेज दो, ताकि हम लोग इन अमाल के जो हम किया करते थे बरखिलाफ़ दूसरे अमाल करें। वी विल चेंज आवर हैबिट्स, हॉबीज़, अपनी अट्रैक्शंस, अपनी मूवमेंट्स, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे। हमें एक बार दुनिया में भेज के तो देखिए हम कितने नेक बन के आते हैं, मिलेगी इजाज़त? वन वे रास्ता है, एयरपोर्ट पे कई जगहों पे लिखा होता है इससे आगे वापसी का रास्ता नहीं है, इसके आगे पैसेंजर्स ओनली, यानी अगर आप में से कोई चला ही गया अंदर सामान छोड़ने या मिलने मिलाने किसी को, तो ज़रा रुक जाए, इसे आगे नहीं जा सकते। कहीं लिखा था एम्प्लॉयज़ ओनली, नो पैसेंजर जोन, कहा जाएगा सॉरी अब आप आगे नहीं जा सकते। बेशक इन लोगों ने अपने आप को खसारे में डाल दिया, और ये जो बातें तराशते थे सब गुम हो गईं। बातें पता क्या तराशते थे? वो मेरी बड़ी लगती है वहाँ, मेरे बड़े वाकिफ़ हैं, बड़ी चलती है वहाँ, मेरा बड़े लोगों से सलाम दो है, और मैं तो ये कर दूंगा, और मैंने बड़ी नियतें करके रखी हैं, और बड़ों की मन्नतें मानी हुई हैं, और बड़े हैं मेरे, सब खत्म, नथिंग, नो वन विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। आप कहते हैं जी सामान बहुत हो, कहते हैं एयरपोर्ट पे जाइए फुलां फुलां हमारा वाकिफ है, वो आपका सामान निकाल देगा, और जब वहाँ जाते हैं है ही नहीं कौन है जी वो, है किसी ने अपना ये किस्सा सुनाया था वही सुना रही हूँ, कहा किधर है, उनको कॉल करें, उसको कह रहे हैं करें, आखिर में ओ सॉरी वो हमारे जो दोस्त हैं उनकी आज तो शिफ्ट ही नहीं है, वो तो आज कहीं और है, अब वापस जाइए या आगे लाइए या पैसे दीजिए। क्या हम इस सोच के साथ आखिरत का सफ़र कर रहे हैं? इतनी केयरलेस पैकिंग की है मैंने आखरत की। यहाँ तो आप गिनते हैं 23 kg, ऊपर नहीं नीचे ही रखना। वैकम ऊपर नहीं कीजिएगा, नीचे करे वहाँ निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो। बच्चों का कोई खिलौना, कोई गन, बंदूक और कोई राइफल टाइप का तो नहीं डाल दिया? आ जाएगा स्कैनर में, पता चलेगा ये असला लेके जा रहे हैं। वी आर सो केयरफुल अबाउट दिस वर्ल्ड एंड वी आर सो केयरलेस अबाउट द आखिर। हमें से अक्सर ने पता क्या सोचा हुआ है, तुक्का लग जाना है। उनकी मशीन ही ख़राब होनी है, मेरी सूद की चीज़ें नज़र ही नहीं आनी उनको, मेरे झूठ तो वहाँ नज़र ही नहीं आने, मेरी गीबत तो पता ही नहीं चलती। और मैं तो स्मार्ट, मैंने पैकिंग इतनी अच्छी की है, मैंने देसी घी का डब्बा छुपा के ले आना है, मैंने फूड भी ले आना है, मैंने ये भी ले आना है, मैंने वो भी ले आना है। हम ये सब दुनिया में कर सकते हैं और हमारा चलता होगा, वहाँ नहीं चलेगा। क्या पता चला इस रुकू से, किताबे हिदायत से फ़ायदा उठाना है, इसके लिए तड़पी है, ये काफ़ी नहीं है अभी हमारे लिए। फिर दीन को खेल तमाशा नहीं बनाना, ये खेल तमाशा क्या है ये जो बढ़ते हैं हर वक्त? हम दीन के नाम पे भी खेल और दुनिया के नाम पे भी खेल, निकाहु मिन सुन्नती, और उसमें 10-100 सुन्नतें टूटती हैं। सर से पांव तक लड़की का हाल हुलिया और उसका एक एक गेटअप और उसका अराउंड सुन्नत के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, और एंड पे सर पे कुरान रखो, साए कुरान के साए में रुखसती कर दो। इससे बड़ा दीन को खेल तमाशा क्या बनाना? सारा साल तुम्हें कोई ना देखे और शादी वाले दिन आप कहते हैं कि अभी इस मौके पर मैं क्या करूँ, भाई की शादी है, बच्चे की शादी है, बहुत सारे शहर वाले हमें देख लो आज, सारे शहर के रईस लोगों को और सबको बुलाओ, ड्राइवरों को भी भाई, और अपनी बहू बेटियां दिखा दो क्योंकि आज उनकी शादी है, दुल्हन बनी हुई है ना, सज रही हैं। और कुछ नहीं दीन को खेल तमाशा बनाना, तो दूल्हा तो देखेगा बाद में, पहले फोटो सेशन वाले को तो दिखा दो लड़की का एक एक रंग रूप, और ज़रा सजाते वक्त भी लड़की लड़के ही से सजे ताकि वो उसके जिस्म के एक एक कट को देख ले। ये बातें कोई गलत कह रही हूँ मैं? सुनी भी आपने? आपके शहर में मौजूद हैं ऐसे लोग जो लड़की को, दुल्हन को लड़के तैयार करते हैं, यहाँ से टिकट देकर लोग पाकिस्तान पंजाब उनको शादियों पे बुलाते हैं कि आइए हमारी भी इज्जत नीलाम कर जाइए, फिर हम रोते हैं। ये तो बड़ा कम गुस्सा है अल्लाह का हम पे। तो दीन को खेल तमाशा मत बनाइए, दुनिया के धोखे में नहीं आना, किताबे हिदायत के लिए काम करना है। बोलिए इंशाल्लाह, जितनी नियत करेंगे यहाँ बैठकर जो नियतें करनी है कर लें। हर स्टेशन वालों को मैं यही कह के आती हूँ और आपको भी यही कहूँगी, अब आवाज़ें शुरू हो गई हैं इस बात की कि दौरे कुरान के बाद इधर क्या होना है, और ये नेचुरल फिनोमिनन है, नथिंग इज़ न्यू फॉर मी। अब हर दिन मेरे कान में आवाज़ पड़ रही है कि दौरे कुरान के बाद हमने क्या करना है, हम तो अब इसके बगैर नहीं रहेंगे। तो ये बात अभी से लिख लें, ये महफिल इस जगह पे बैठ के नियतें किया करें, ये फैसले करवाने वाली जगह है। यहाँ जितना ज़्यादा आप बैठकर अल्लाह से रोएंगे ना कि अल्लाह हमसे भी दीन का काम ले लें, अल्लाह तूने फ़लाँ से लिया मुझसे भी ले, अल्लाह को दो में रो रो के दिखाया करें, अल्लाह मेरे में क्या कमी है, अगर मेरे इखलास कम है तो मुझे इखलास दे दे, अगर मेरी अक़ल में कमी है तो अल्लाह ताला मेरी अक़ल को बढ़ा दे, और सो ऑन दिस एंड दैट कर कर करा दे, लेकिन मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं अपने आप को इस किताब के लिए खपा दूँ। आप देखेंगे कि जितनी आपकी नीयत खरी होती जाएगी ना, और सुन्नत का रंग आपकी ज़िंदगी में ढलता जाएगा, उतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपका असर बढ़ाता जाएगा। आप ख्वाहिश दिल में करेंगे और फलनवलियन्नक क़िबलन तरदाहा, हम आपको आपके उस क़िबले की तरफ ज़रूर फेर देंगे जिसकी तरफ आप चाहते हैं। ये जो अल्लाह ताला आपकी सुनने लग जाता है ना, आपको पता है ये असल में किस चीज़ का रिएक्शन होता है? आप अल्लाह की सुनने लग जाते हैं। क्या अल्लाह ने कहा वाइज़ा साल का इबादी अन्नी फ़ाइन्नी करीब में, क्या कहा था? फल यस्त जीबुली वल यू मिनूबी लाल लहू यरशुदोन। तो पहले आप सुनते हैं, फिर अल्लाह आपकी इतनी सुनता है कि आपको अपने ऊपर शर्म आने लग जाती है। तो क्या करना है? अल्लाह से दुआएं मांगनी है कि अल्लाह हमसे दीन का काम ले, फिर झूठ नहीं गढ़ना और आखिरत की मुलाकात को नहीं भूलना, और आगे रुकू नंबर 14 आयत 54 से 58, सिर्फ अल्लाह को पुकारना है। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 रोज़ में पैदा किया है, फिर अर्श पर कायम हुआ, वो रात से दिन को ऐसे तौर पर छुपा देता है कि वो रात इस दिन को जल्दी से आ लेती है, और सूरज और चांद और दूसरे सितारों को पैदा किया है, ایسے طور پر کہ سب اللہ کے حکم کے بندے ہوئے ہیں، کہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. یاد رکھو، اللہ ہی کے لیے خاص خالق ہونا اور حاکم ہونا بہت خوبیوں سے بھرا ہوا. وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کے بھی اور چپکے چپکے بھی. واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں، اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستگی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے. بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ خوش کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں. یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو. اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے. اس طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں. کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اپنے عقیدے کو درست کرنا، سب سے پہلے اس بات کا یقین رکھیے کہ اللہ عرش پہ ہے اور عرش کا مالک ہے. کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اس جملے کو بس بدل لیجئے. اللہ عرش پہ ہے، ہاں اس کا علم، اس کی سماعت اور اس کی بصارت ہر جگہ ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کر پکارنا ہے اور کبھی چپکے چپکے بھی پکارنا ہے، یعنی شرک فی دعا نہیں کرنا. پھر شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوف اور طمع سے بھی پکارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ رکوع نمبر 14 کی آخری آیت میں زمین کی ایک مثال دی گئی کہ کوئی زرخیز زمین ہوتی ہے اور کوئی بہت ہی کم زرخیز زمین ہوتی ہے. اب یہاں سے آگے سورۃ الاعراف کا وہ حصہ شروع ہو رہا ہے جہاں سے انبیاء کرام کے قصے ہیں. جس طرح زمینوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اسی طرح انسانوں کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. اللہ نے ہر دور کے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن جن کے دل زرخیز تھے زمین کی طرح، انہوں نے رسولوں کی دعوت پہ لبیک کہا اور وہ بچ گئے. اس کے برعکس اللہ نقیدہ، عربی کا لفظ اگر آپ دیکھیں نا، نقیدہ، بیکار، نکارا، بالکل فضول قسم کی جو زمین تھی اس کے اندر بنجر اور جھاڑ جھنکار تھی، ان کو نبیوں کا پیغام نہ سمجھ آیا اور نہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی. نتیجہ کیا ہوا کہ کسی کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا اور کسی کو کسی جگہ. یہاں چونکہ انبیاء کرام کے قصے پہلی دفعہ آ رہے ہیں قصص الانبیاء میں، اور اسی طرح یہ کہیں انباء الرسل میں آتے، انشاءاللہ ہم اس کو کئی بار پڑھیں گے قرآن میں. اس وقت صرف کانوں سے ٹکرا کر اپنے لیے اس چیز کو باندھ لیجئے کہ میں نے نقیدہ نہیں بننا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کو اس کی خوبیوں کے مطابق، اس کے اندر جو سکلز ہوتی ہیں، جو وہ کر سکتا ہے، اس کے مطابق دنیا میں بھی نوازتا ہے. تو آئیے ذرا یہاں سے اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ دیکھتے ہیں، اور اسی طرح ایک بائی ایک کر کے آگے چلتے جائیں گے. آیت 59 سے 64 ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ. خیر خواہی سے رب کا پیغام پہنچانا ہے. رکوع نمبر 15. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے، اس لفظ بڑے کو ذہن میں رکھیے گا، ملا، ہر دور میں حق دعوت کے آگے کھڑے ہونے والے لوگ بڑے، ان لیڈز، انفیشلز، پیسے والے، رتبے والے، سیاست والے ہوتے ہیں، کیونکہ نبیوں کی دعوت ان کے لائف سٹائل پہ چوٹ ڈالتی ہے اور ان کی مزید ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہوتی ہے، اور ان کے دل میں کبر بھی ہوتا ہے. کیا کہا بڑے لوگوں نے؟ ہم تو تمہیں ایک سری غلطی میں دیکھتے ہیں. انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا سی بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان باتوں کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں. اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی، تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ बस वो लोग इनको छुटलाते ही रहे। तो हमने नूह अलैहिस्सलाम को और इनको जो इनके साथ कश्ती में थे बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को छुटलाया था इनको हमने गर्क कर दिया। बेशक वो लोग अंधे हो रहे थे। क्या ब्लाइंड हो गई थी ये कौम? नहीं, हिदायत से अंधे थे। क्या पता चला? अल्लाह की इबादत करनी है और उसकी तरफ दावत देना है और रब का पैगाम दूसरे बंदों की तरफ पहुँचाना है। 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, हमें तो अभी शायद 9 साल भी ना हुए हों। फिर इसी तरह से रसूलों पे ईमान लाना है, तकवा इख्तियार करना है और खैर ख्वाही करनी है। हर नबी में आपको यही खूबियाँ कमोबेश मिलेंगी। और अगर आप सहाबा कराम के नाते से इस बारे को रिलेट करें ना, तो सहाबा में यही सारी खूबियाँ थी। अल्लाह हमें भी भर दे। आगे कौमें आद जिनके तरफ नबी हूद आए थे उनका तस्करा है, रुकू नंबर 16 आयत 65 से 72 है। दयानतदारी से रब का पैगाम पहुँचाना। व इला आद इन अखा हम हूदा, और हमने कौमे आद की तरफ इनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया, मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, बस क्या तुम नहीं डरते? इनकी कौम में जो बड़े लोग काफिर थे उन्होंने कहा, हम तुमको कम अकली में देखते हैं और हम बेशक तुमको झूठे लोगों में समझते हैं। उन्होंने फरमाया कि मेरी कौम मुझमें ज़रा सी भी कम अकली नहीं। देखिए, हर दौर में लोग दीनदार को कम अकल कहते हैं, यही बात यहाँ भी दिख रही है। लेकिन मैं परवरदिगारे आलम का भेजा हुआ पैगम्बर हूँ, तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ, और मैं तुम्हारा अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। अंदाज़ देखिए कितना अजी आला है। और अल्लाह के पैगाम पहुँचाता हूँ, खुद से कुछ नहीं कहता। और क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स की मार्फत जो तुम्हारी ही जिन्स का है कोई नसीहत की बात आ गई, ताकि वो शख्स तुमको डराए? और तुम ये हालत तो याद करो कि अल्लाह ने तुमको कौम नूह के बाद जानशीन बनाया, और डेल डोल में यानी जिस्म और जुस्से में तुमको फैलाव ज़्यादा दिया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम फलाह पा लो या तुमको फलाह हो। उन्होंने कहा, क्या आप हमारे पास इस वास्ते आए हैं कि हम सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें? हैरत थी उनको कि एक की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादे पूछते थे इनको छोड़ दें। ये भी हर दौर में लोगों को मसला रहा। बस हमको जिस अजाब की धमकी देते हो इसको हमारे पास मंगवा दो अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने फरमाया, बस अब तुम पर अल्लाह की तरफ से अजाब और गज़ब आया ही चाहता है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने ठहरा लिया? इनके माबूद होने की अल्लाह ने कोई दलील नहीं भेजी, बस तुम मुंतजिर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। किस बात का? मैं अल्लाह की मदद का मुंतजिर हूँ और तुम अल्लाह की पकड़ का इंतज़ार करो। गरज हमने इनको और इनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया, और इन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था और वो ईमान लाने वाले न थे। ऐसे लगते हैं कि कौम के हाल पे अफसोस किया जा रहा है इन आयात में। क्या सीखा हमने? अल्लाह से डरना है, रब का पैगाम पहुँचाना है, दयानतदार होना है, बी ऑनेस्ट, अल्लाह की नेमतों को याद करना है, और लोगों को इंजाम से खबरदार करना है, और खैर ख्वाह होना है। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक दे। आगे है जी रुकू नंबर 17 73 से 84। इंसानों को रब की दावत देना है। कौमे समूद का तस्करा है। वइला समूद अखाहुम सालेहा, और हमने समूद की तरफ इनके भाई सालेह को भेजा। उन्होंने फरमाया, मेरी कौम के लोगो, यह मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ह दलील आ चुकी है। ये ऊँटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए दलील है, बस इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरे, और इसको बुराई के साथ हाथ भी मत लगाना कहीं तुमको दर्दनाक अजाब ना पकड़े। और तुम ये हालत याद करो कि अल्लाह ने तुमको आद के बाद जानशीन बनाया और तुमको ज़मीन पर रहने का ठिकाना दिया, कि नरम ज़मीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर इनमें घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। इनकी कौम में जो मुतकब्बिर सरदार थे उन्होंने गरीब लोगों से जो कि इनमें ईमान लाए थे पूछा, क्या तुमको इस बात का यकीन है कि सालेह अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ से भेजे गए हैं? शक डाल रहे थे असल में दिल में। उन्होंने कहा कि बेशक हम तो इस पर पूरा यकीन रखते हैं जो इनको देकर भेजा गया है। वो मुतकब्बिर लोग कहने लगे, तुम जिस बात पर यकीन लाए हो हम तो इसके मुनकरीन हैं। बस उन्होंने सूटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे, साले जिसकी आप हमको धमकी देते थे इसको मंगवाइए अगर आप पैगंबर हैं। بس ان کو زلزلے نے آپ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے. اب یہاں ذرا نبی کا درد محسوس کیجئے گا. قومیں نافرمان ہو جاتی ہیں نا, تو نبیوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ماں باپ کو اپنے بچوں کی بے دینی یا ان کے ہدایت سے گم ہونے پہ ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں, فرمانے لگے میری قوم, میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی, لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے. بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا تمہیں بعد میں ہماری قدر آئے گی, جب ہم نہیں ہوں گے نا پھر تم یاد کرنا ہمیں. ہم یہ کرام بھی اسی درد کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیش کر کے آپ کے میرے لیے حجت بناتے ہیں. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے جہان والوں میں نہیں کیا. تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر, بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو. اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو, یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں. بس ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے, کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے. اور ہم نے ان پر خاص طرح کمی برسایا, بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا. دو نبیوں کے قصے کیا بتاتے ہیں آپ کو مجھے, اللہ کی عبادت کرنی, اس کے احسانات کو یاد کرنا, خیر خواہی کرنا ہے اور حد سے نہیں گزرنا, تکبر نہیں کرنا اور زمین میں فساد نہیں کرنا. اس کے بعد اب آخری قصہ جو اس پارے میں شروع ہو کے اگلے پارے میں کنٹینیو ہوگا, قوم شعیب کا قصہ ہے. رکوع نمبر 18 آیت 85 سے 87. رب کی طرف جو چیز لے جائے اس پہ ایمان لانا ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے فرمایا میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے, بس تم نا پر تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو, اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستگی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ. یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو, اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو, اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش کرنے میں رہو, اور اس حالت کو یاد کرو جب تم کم تھے پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا, اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا. اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے, تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے, اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے. کیا پتہ چلا, ہر نبی کی ایک ہی دعوت ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک نبی کی قوم میں سے جو بچ گئے تھے نا, کچھ عرصے کے بعد انہی میں بگاڑ آیا اور وہ دوسرے نبی کی قوم بنے, اور ان کے اندر خرابیاں جو آئیں تو اس سے تباہ ہو گئے, پھر دوسرے کے تیسرے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ لوگوں میں جو بگاڑ آتا ہے, ہم نے ابھی سے اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کی فکر رکھنی ہے کہ آج ہم تو نیکیاں کریں یا کرائیں اور اللہ کی بات سمجھیں, ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اور ہماری نسلیں دین سے دور ہو جائیں. اس رکوع سے ہمیں اللہ کی رضا پانے کے جو کام ملے, عبادت کرنا اللہ کی, ناپ تول کم پورا دینا, لوگوں کی چیزیں گھٹا کے نہیں دینی, انبیاء کے دعوتی نکات کو سمجھنا اور آگے پہنچانا, اور لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرنا, اور ان کی طرف سے جو باتیں آئیں اس پہ صبر کرنا. یہاں پہ الحمدللہ پارہ نمبر 8 پورا ہوتا ہے. پورے پارے کا اگر خلاصہ کر دیں تو قرآن کا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے. اس کے باوجود وہ نبی سے معجزات مانگتے رہے, سورۃ الانعام میں دیکھا ہم نے. پھر قوموں کے قصے انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا ذریعہ ہوتے ہیں. پھر خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ہمیں سب کو پیغام دیا تھا کہ تمہارے اعمال نامے تلیں گے اور قیامت کے دن تم اپنی نیکیوں کو تلتا دیکھ کر حسرت کرو گے کہ کاش دنیا میں جو نیکی چھوڑ دی تھی وہ نہ چھوڑتا, اور آج میرے اعمال میں زیادہ نیکیاں ہوتی. اور خاص طور پہ پھر اعراف کے مقام کے ناطے سے آج ہم نے کیا دیکھا کہ اصحاب اعراف میں شامل ہونا ہے اگر, تو پھر جتنا آرام سے مرضی نیکیاں کریں چھوڑیں, پک اینڈ چوز کریں, آئی لائک دس نیکی, آئی ڈونٹ لائک دس نیکی, آج یہ نہیں وہ نہیں. اور اگر نیکیوں میں जल्दी करनी है तो इस सोच के साथ कीजिए कि आराफ के मुकाम पे पोस्टपोन ना हो और लोग पास से गुजरें तो कैसा लगता है। आप देखिए एयरपोर्ट पे अगर किसी बंदे का कोई इशू चल रहा हो तो आते जाते सब उनको घूर घूर के देख रहे होते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है, कोई मसला है, कोई गड़बड़ हो गई है, क्या है। और अल्लाह ताला से दुआ का ताल्लुक मजबूत करना है और ज़मीन में हर किस्म के फसाद से बचना है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम वसल्लल्लाहु ताला खैरी खल्किही वअस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।